पिता है या मेरा पुत्र है, इस अहंकार से शून्य होता है जीव। जीव जो अपने स्वरूप में होता है तो ये कोई अहंकार उसे नहीं रहता है। और समय में तो छोड़ दिए, जीव सो जाता है तो सब भूल जाता है। उस समय उसको कुछ भी याद नहीं रहता है कि मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरा यह है वह है। तो जब इसी शरीर में रहते हुए सोने पर वह संबंध भूल जाता है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो भूल जाता है, उसमें कहना ही क्या है। शरीर छोड़ने के बाद किसी को भी याद नहीं रहती है कि मेरा कौन पिता था पहले, कौन माँ थी, कौन भाई था, कौन पुत्र था। हम लोगों में से किसी एक को भी याद है? और तो भाई आदि की बात छोड़ दीजिए, कहां पर थे, किस स्थान में जन्म लिए थे, नाम क्या था पहले, ये सब भी पता नहीं। लेकिन आखिर कहीं ना कहीं तो रहे होंगे, किसी न किसी परिवार में रहे होंगे, पशु पक्षी में चाहे मनुष्य में देवता में जहां भी रहे हों, किसी को याद नहीं है। तो इसी को यहां निरहंग कृतः कहा जाए। जीव में वास्तव में भावना नहीं है कि हमारा पिता है, हमारा पुत्र है, हमारा संबंधी है, हमारा शत्रु है, यह भावना नहीं है। अच्छा, महाराज जी ने कहा कि अपने पिता के द्वारा दिए हुए भोग को भोगो, तुम राजा के पुत्र हो, फिर ऐसा भोग कहां मिलेगा। इसका उत्तर देता है, जावत जत्रों पर लब्ध होता तावत स्वतः मित्र स्वतः। व्यक्ति जहां जन्म लेता है, जिसके यहां कोई पिता बना मां बने कुछ भी, तो जहां जन्म लेता है वहीं पर उसका स्वत्व रहता है। कोई जरूरी तो है नहीं कि चित्रकेतु के घर में जो जन्म लिए हैं उन्हीं को खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, घर मिल रहा है, और बाकी दूसरे के जहां जो जन्म लिया उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जहां जन्म लेता है व्यक्ति तो वहां उसका रहता ही है। तो मैं इस पिता के द्वारा दिए हुए भोग को क्यों भोगू, तुम्हारे भोग को क्यों भोगू। मैं जहां जन्म लूंगा वहां पर भोग मिलेगा ना। सब ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है। वास्तव में कोई बच्चा किसी के यहां जन्म लेता है, गर्भ में आता है, मां के गोद में आता है, तो जहां जन्म लिया वहीं पर उसको दूध पहले पहल मिलने लगता है, मां के स्तनों का दूध पीने लगता है। ये भगवान की व्यवस्था है। तो जहां जाऊंगा क्या वहां भोग नहीं मिलेगा? किस मरे हुए शरीर में लौट आऊं भोग भोगने के लिए? जिस शरीर को छोड़ दिया इस पिता के भोग को भोगने के लिए मैं लौटू, क्या जरूरत है? जहां भी जीव जाता है किसी भी जोली में, तो भगवान व्यवस्था किए हैं उसके कर्मानुसार, खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है। अरे मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी में जन्मे हुए लोग खा रहे हैं कि नहीं? और मनुष्य शरीर छोड़ते समय उनको कोई कहे कि ये देखो तुम दूसरे शरीर में जा रहे हो, क्या खाओगे, इसीलिए मनुष्य शरीर मत छोड़ो, इसी शरीर में रहो, जो खाने पीने को मिल रहा है इसी में मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा। लेकिन जीव कहीं भी जाए उसको भोजन मिलता है, पक्षियों को भी बिना काम धंधा किए मिल रहा है। हम लोग सवेरे जूहू में टहलने जाते हैं, देखते हैं कितने पक्षी आकर के सवेरे सवेरे कुछ न कुछ खाते हैं, कोई न कोई मछली, कुछ न कुछ, कोई दानी पुरुष रोटी भी फेंकते हैं, चने भी देते हैं और लोग खा लेते हैं। मनुष्य से पहले उनका नाश्ता होता है, सूर्योदय होते होते, और मनुष्य तो चिंता में रहते हैं, 9-10 बजे जागेंगे, चाय पी लेंगे और 1 बजे फिर खाएं। तुमको तो खाने को ऐसे भी नहीं मिल रहा है, पशुओं को मिल रहा है, पक्षियों को मिल रहा है, जलचर जीवों को समुद्र में मिल रहा है। तो हम इसके बाद जहां जाएंगे वहां कोई बाप बनेगा, कोई बनेगा, तो हमको तो भोजन मिलेगा, ये सब मिलेगा, तुम्हारे कृपा तो क्यों रहो। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि हाय रे हमारा स्वजन मर गया, कहां गया होगा, क्या खाता होगा, यहां था तो सुख से था। यह बहुत बड़ा ज्ञान है, लगता है पूरी दुनिया यही चला रहे हैं। और प्रकट तो ये देखा जाता है कि अपने परिवार में अगर 3-4 आदमी हैं, 5-6 आदमी हैं, तो बस उसी का भोजन चल रहा है। इस तरह से भी देखे तो लाखों करोड़ों परिवार हैं, तो सबका भोजन चल रहा है कि नहीं, उसमें हम कितना दे रहे हैं खाने के लिए। एक बार एक व्यक्ति बहस कर रहा था कि ये तुम लोग जो साधु बने हो हम समझ रहे हैं, केवल खाने के लिए, खाने के लिए ये साधु बन गए। तो हम लोग कई भक्त थे, जी उब गया सुनते सुनते। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग खाने के लिए साधु हुए हैं, तुम्हारे घर से कई बार भोजन हम लोगों के लिए आया है ये बताओ। अब तो बिल्कुल चुप हो गए, तुम्हारे घर से क्या हम लोग मंगाए हैं, कभी खिलाए हो? तुम्हारा नहीं खाए ना, खाने के लिए साधु हुए, इस तरह से बोलते हैं खाने के लिए साधु। साधु बने जाता है उसे, मतलब उसी दिन से भोजन बंद कर दे क्या है? जो बिचारी है ये लोग ये सोचते हैं साधु बन गए तो अब रोज एकादशी व्रत ही करो और राम राम करो, अब खाने की जरूरत नहीं। पृथ्वी देवी तो साधुओं को खिलाना चाहती है और जो लोग भक्त नहीं है उनको मार देने का उन्होंने उपाय किया था। तो पृथ्वी भगवान आए तो डांट डपट कर पृथ्वी को कहे को पैदा दो, नहीं तो सब मर गए होते। तो इस तरह से व्यक्ति जहां भी जाता है उसके भोजन की व्यवस्था रहती है। मान लीजिए हमने अपना पशु बेच दिया तो जो पशु को खरीदता है वो स्वयं ही सोचता है कि इसको कहां खिलाना है, कहां नाद बनाना है। नाद मतलब बैल का बर्तन, वो कहां कैसे खिलाना है पहले सोच लेता है। और वो बेचारा कृत पशु, खरीदा हुआ पशु, वो चिंता नहीं करता है कि कहाँ ले जा रहा है, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, वो बेचारा नहीं सोचता। पर मनुष्य इतनी चिंता में रहता है, वहां जा रहे हैं तो खाने को मिलेगा कि नहीं, रहने को मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, एक पशु भी चिंता नहीं करता। जो खरीद करके ले जा रहा है वो चिंता करता है, लेकिन पशु बेचारे चिंता नहीं करता, कहाँ पानी पीऊंगा, कहाँ बैठूंगा, कहाँ कस, गले में रस्सी बंधी रहती पर फिर भी चिंता नहीं होती। और मनुष्य तो फ्री है, चिंता से जल रहा है। तब उसका पिता कहता ठीक है, तुम तो जहां जाओगे वहां तुमको मिलेगा खाने को, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमारी तो ममता है ना, तुम तो मेरे पुत्र हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि तुमको पुत्र मान करके तुम्हारा पोषण करूं। तब वो कहता है देखो पिताजी, जावत जतो पल्लभ हो तत्वत स्वतम इत सतत। कोई व्यक्ति किसी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है तो जब तक पुत्र शरीर में है तभी तक उसका स्वत्व रहता है। वो शरीर छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में चला गया तो वहां पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता है पुत्र पर। मरने के बाद भी आप पुत्र पुत्र मत कहिए, ये सोचना चाहिए कितने संबंध अनित्य है, क्षणभंगुर है। जब तक जी रहा है तब तक ठीक है, स्वत्व है, कह सकते हैं कि मेरा बेटा है बेटा है, लेकिन उसके बाद कट जाता है संबंध, नहीं रहता। तो दोनों तरफ से है, चाहे पिता की दृष्टि से देखिए तो जब तक जीवन है तब तक संबंध रहता है, पुत्र की दृष्टि से देखें तो वो साफ कह रहा है कि आप क्यों क्यों मैं इसका राज्य भोगूं और इसका दिया हुआ भोग भोगूं, जहां जाऊंगा वहां भगवान सब व्यवस्था रखते हैं। पशुओं में हमने देखा है बेचारे जाते हैं कहीं भी चिंता नहीं करते हैं। मनुष्य तो दो दिन के लिए भी जाता है तो बांध लेता है कुछ भोजन और साथ में पैसा, उसके पहले ही फोन कर देता है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। लेकिन जीवात्मा बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा है कि पशु की तरह चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान सब देते। ऐसा नित्य अव्यय सूक्ष्म, ऐसा सर्वाश्रय स्वदृक्, आत्माया गुणैर्विश्वम आत्मानं सृजते प्रभु। देह तो अनित्य है लेकिन जीव किस तरह से नित्य है इसको जीव आत्मा बता रहा है। ऐसा नित्य अव्यय सूक्ष्म, पुनः कह रहा है ऐसा सर्वाश्रय स्वदृक् और आत्ममाया गुणैर्विश्वम आत्मानं सृजते प्रभु। ऐसा यह आत्मा जीव नित्य है, नित्य है का अर्थ है कि अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अच्छा, ये तो नित्य है, पहला लक्षण बता रहे, शरीर अनित्य है, शरीर को भी इसके साथ साथ रखना पड़ेगा। ऐसा नित्य है, परंतु शरीर अनित्य, शरीर पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहता है, गर्भ में आने के पहले शरीर नहीं रहता और गर्भ में भी इस रूप में नहीं रहता है, दो महीने तीन महीने के बाद तब हाथ का धीरे धीरे पता लगता है कि इसमें से हाथ निकल रहा है, या सिर का सिरोद्वाभ्याम, और कर चरण तीन महीने के बाद, और चार महीने का जब जीव होता है तब उसके भिन्न भिन्न छिद्र प्रकट होते हैं, से इंद्रियां वगैरह, पांच महीने का होता है तब भूख लगती है, तो शरीर बनता है, यह नित्य नहीं है, बंदा धीरे 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 जन्म लिया, जन्म लेकर के इसको खिलाया पिलाया गया, बढ़ा, इसके बाद कुछ काल के बाद अपक्षी होते, छीण होने लगता है, और छीण होने के बाद विनश्यति, पूरा नष्ट हो जाए, परंतु आत्मा नित्य है, ये कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी रोगी नहीं होता, कुछ नहीं, नित्य है। अच्छा, तत्कुत कैसे माने कि नित्य है, क्योंकि यह सूक्ष्म नहीं अव्यय है, क्योंकि यह अव्यय है, अव्यय का अर्थ है कि इसका जन्म नहीं होता है और इसका मरण नहीं होता है, इसको अव्यय कहते हैं, जो व्यय नहीं होता है, नित्य है, क्यों नित्य है, क्योंकि अव्यय है। अच्छा, तत्चकुत है अपक्षय शून्य, अव्यय का अर्थ होता है घटता नहीं है बढ़ता नहीं है, और सूक्ष्म का अर्थ है कि जन्मादि शून्य, इसका जन्म आदि हो ही नहीं सकता है। अच्छा, इसके बाद है सर्वाश्रय, जन्मादि मतो देहादिर आश्रय मतो देहादि रूप इत्यर्थ, आत्मा देह का आश्रय है, देहमय नहीं है, देह से भिन्न है, देह का ये आश्रय है। यह किसी से प्रश्न किया जाए कि आत्मा के कारण शरीर टीका है कि शरीर के कारण आत्मा टीका है, ये प्रश्न हो सकता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि शरीर है इसलिए आत्मा इसमें बस रहा है, नहीं, आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है या चाहे बढ़ता है घटता है जो कुछ भी है, आत्मा है इसलिए आत्मा को सर्वाश्रय कहा गया, सर्वाश्रय का अर्थ है कि हाथ का पैर का आंख का नाक का सबका आश्रय, आत्मा है इसलिए देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, खाने की शक्ति है, तो आत्मा के कारण शरीर चल रहा है, शरीर के कारण आत्मा नहीं चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार उठता है मायाबद्ध जीवों के कि शरीर खत्म हुआ बस आत्मा भी खत्म हो गया उसी और पढ़े लिखे लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग, ये केमिकल्स जो है मैटर सब बिखर जाते हैं तो चेतना भी लुप्त हो जाती और लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, वे ऐसा कहते हैं मैटर के संयोग से कुछ चेतना उत्पन्न हो जाती है, नहीं, यह झूठी बात है। अगर ऐसी बात है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन लोगों को मैटर खूब सप्लाई कर दो, लोग चेतना पैदा करते रहे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, जीव के कारण शरीर है, शरीर के कारण जीव नहीं, देखते जैन ही जीवात्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है, शरीर के सारे अंग जैन के तरह रहते हैं लेकिन कोई काम नहीं कर सकते, आत्मा के जाने के बाद ही शरीर की नाक काम नहीं करती है, आंख काम नहीं करती है, वाणी से बोलना बंद, हाथ का पैर का चलना स्पंदन सब बंद हो जाता है, ये सर्वाश्रय स्वदृक और यह स्वप्रकाश है, दृक का अर्थ है साक्षात और प्रकाश, स्वयं चेतन है यह, इसमें चेतना दूसरे तरह से नहीं भरी जा सकती, इसकी अपनी चेतना है, यह चेतनमय चिन्मय है जीव, और शरीर में जो चेतना है वह इसकी अपनी चेतना नहीं, जैसे हमारा हाथ हिल रहा है, आंख देख रही है, पैर चलता है, तो यह है आत्मा की स्वाभाविक, शरीर की स्वाभाविक चेतना नहीं है, आत्मा की चेतना उधार ली गई है, इसमें आत्मा है इसलिए शरीर चेतन लग रहा है, नहीं तो यह है जड़, आत्मा अपने आप में चेतन है, उसमें चेतना का संचार दूसरा नहीं करता, आत्ममाया गुणर विश्वम आत्मा नम सृजते प्रभु, तो यह अपने गुणों से अर्थात अपने कर्मों से देह की सृष्टि करता है या विश्व की सृष्टि करता है, यह समर्थ है, यह देह का यह स्वामी है, प्रभु है। इस विषय पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि आत्मा को तो ऐसा बना दिया गया है, लगता है जैसे भगवान है, ये अपने गुणों से विश्व की सृष्टि करता है। विश्व शब्द भी आया है आगे, विश्वम आत्मान, यह विश्व की सृष्टि करता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में जीव के लिए, जीव के कारण ही इस विश्व की सृष्टि भगवान ने किया है। अतः एक प्रकार से कहा जा सकता है कि विश्व का निर्माण जीव करता है। जैसे यह कहा जाए जेल के विषय में कि जेल का निर्माण कैदियों ने किया है, तो सुनने में तो गलत बात लगती है। ऐसा आप पाएंगे कि नहीं, जेल तो पहले से बना रहता है जेल पहले से बना रहता है, उसमें बाद में कैदी जाता है। परंतु एक सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो अपराधियों ने मिल करके जेल का निर्माण किया है। यदि अपराधी नहीं होते संसार में तो जेल सरकार बनाती नहीं, फालतू घर बनाने की क्या जरूरत। लेकिन आत्मगुण ही अपने गुणों से, क्राइम से कैदियों ने इस जेल का निर्माण किया है। वही कारण है, भले एक दिन काम किए हो या न किए हो उसके कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उनके कारण बनाया जाता है। इस तरह से इस जीव को कहा जा रहा है कि जीव अपने गुणों से, अपने कर्मों से इस विश्व का निर्माण किया है। केवल देह कहीं नहीं, देह तो अपने कर्मों से बनाता ही है, वास्तव में बनाती है माया, लेकिन जीव के कर्मों को देह करके बनाती है। और उसके द्वारा देह के अतिरिक्त जीव को भोगने के लिए वस्तु बनाई जाती है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए घर आदि बनाना, पत्थर बनाना, लकड़ी बनाना सब। तो वास्तव में जीव इस विश्व का निर्माण करता है, निर्माण में कारण है, इसके लिए सृष्टि होती है। तो नह्यस्यात् प्रियः कश्चित् ना प्रियः स्वपरोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तृणां गुणदोषयोः। फिर नारद जी ने यह कहा था कि हे जीव, तुम अपने सुहृदों के साथ घिर करके, इनके साथ रह करके, इनके साथ भोग भोग, तुम्हारे बंधु बहुत तप्त हैं, तुम्हारे संबंधी रो रहे हैं। तो इस पर आत्मा कहता है, इस जीव कहता है कि आत्मा का कोई प्रिय नहीं है इस संसार में। मैं ही अस्य अति प्रिय कश्चित् न प्रिय स्वपरोऽपि वा, इस आत्मा का न तो कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है, न कोई अपना है, न पराया। यह देखा जाता है कि जीव वास्तव में अपने स्वरूप में जब होता है, यह माया में भी रहता है, तो फिर भी इसका जो, इसकी जो भावना है किसी के प्रति कि यह मेरा प्रिय है या मेरा शत्रु है, वो तो सब समय नहीं रहती है, मिट जाती है, भूल जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का कोई अति प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। प्रिय किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु, जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से किसी को सुख देता है, अनुकूल आचरण करता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति का प्रिय है। लेकिन वास्तव में आत्मा का हित कौन कर रहा है? कौन संबंधी ऐसा है जो उसका हित करता है और इस कारण से उसका प्रिय है? कौन संसार में ऐसा है? कुछ भगवान के भक्तों को और भगवान को छोड़ करके वास्तव में जीव का कोई प्रिय नहीं, कोई प्रिय कर ही नहीं रहा है, ये संभव नहीं है। इस संसार में देखा जाता है परिवार में या और कोई संबंधी होते हैं तो उसको कुछ अनुकूल वस्तु देते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो लगता है कि आत्मा को सुख दे रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो सपना में कोई व्यक्ति अनुकूल भाव से प्रिय बन करके और उसको सोने का आभूषण दे या रेशमी कपड़ा दे, सपने में खूब मिठाई बना बना कर खिला रहा है, लेकिन जगने के बाद पता लगेगा कोई प्रिय नहीं था, कोई कुछ नहीं किया। और इसी तरह से न अप्रिय, सपने में कोई किसी को खूब गाली दे रहा हो, पहचाना हुआ व्यक्ति खूब गाली दे रहा हो और इसके बाद घर में आग भी लगा दिया, बहुत प्रहार किया या मस्तक काट कर भी ले गया, मान लीजिए सब किया, गाली दिया, धन छीन लिया, मारा पीटा, लेकिन जगने के बाद कुछ नहीं, कोई अहित नहीं किया है उसने, हमने ऐसा सुना है कि कभी कभी कोई व्यक्ति देखता है कि हमारी गर्दन कट गई है तो जगने के बाद अपने हाथ से छू कर देखता है क्या और फिर कहीं खरोच रोच तो नहीं है। लेकिन सपना में चाहे कोई किसी को कुछ दे, सम्मान परक वचन बोले, अथवा कोई उसको गाली दे, सब छीन ले, मार करे, दोनों में कोई भेद नहीं है। उस व्यक्ति के लिए जो सो रहा है, निद्रा में है, सपना देख रहा है, उसके लिए वास्तव में ना तो कोई उसका प्रिय किया, कोई प्रिय है ना अप्रिय। तो इस तरह से मायाबद्ध जीव है इस संसार में, माया के चंगुल में है, भोग रहा है दुख। यहां पर क्या कोई उसको सुख देगा और क्या कोई अब अप्रिय करेगा? इससे ज्यादा अप्रिय क्या कर सकता है जिसको माया ने देह दिया है दुख देने के लिए? अब इससे ज्यादा अप्रिय कोई क्या करेगा? इसलिए आत्मा का वास्तव में कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, तो केवल मन में मान लेता है। और न स्वह परह अपिवा, न तो उसका कोई स्वजन है, न कोई परजन, कोई शत्रु है, कोई नहीं। सपना में यदि आदमी मान ले कि हमारा इतना समाज है, हमारी पत्नी है, हमारे इतने बच्चे हैं, और हमने अपने बच्चे का भी विवाह कर दिया, हमारे संबंधी हैं, हमारे ये हैं वो, जगने के बाद न तो बच्चा है, न पत्नी है, न संबंधी, न संबंधी, कुछ नहीं है, खत्म हुआ। और इसी तरह से कोई पराया नहीं, केवल मन में धारणा बनी हुई है कि यह हमारा ऐसा है, हमारा ये है, हमारा हित कर रहा है। और दूसरे की चर्चा होती है, अरे उसकी बात मत करो, तो ये विकार है। इस तरह से जीव बंधा हुआ है संसार, क्या हित करेगा? रामचरितमानस में कहा गया कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। यदि बिना स्वार्थ के वास्तविक हित करने वाले कोई हैं तो आप और आपके सेवक, भगवान श्री राम से कहा जा रहा। केवल भगवान सबके सुहृद हैं और प्रिय, और भगवान के भक्त दूसरों का हित कर सकते, और कोई हित कर ही नहीं सकता है। आत्मा की जो स्थिति है इस संसार में, उसका सबसे बड़ा हित क्या है? हित यह है कि आत्मा चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, उसको स्पिरिचुअल भगवान से संबंध कराया जाएगा तब वो सुखी हो सकता है, अन्यथा उसके सुखी होने का कोई प्रश्न नहीं है किसी भी उपाय से। ये आत्मा का स्वभाव है कि भगवान के संग होने से ही वो सुखी होगा। इसलिए भगवत संबंधी वस्तुओं का संपर्क देना, यही आत्मा का हित करना है। जो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, प्रसाद, ये सब देना, यही आत्मा का हित है, अन्यथा उसका हित होगा नहीं। श्री प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कि हरि ही साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झसाणाम तो यतो निप्सितम। भगवान हरि श्री कृष्ण जीवों के लिए वैसे आवश्यक हैं, वैसे प्रिय हैं, जैसे झसाणाम तोयम, जैसे मछलियों के लिए तोयम जलम। मछलियों के लिए जैसे जल आवश्यक और प्रिय है, वैसे जीवों के लिए भगवान कृष्ण। तो मछलियों को जल से अलग करके उसको अन्य किसी भी उपाय से सुखी नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति यदि पागल हो जाए और किसी मछली के विषय में सोचे कि ये तो जल की गुलामी कर रही है, इसको आजाद करना चाहिए, उसको आजाद करना चाहिए, और जाकर के कहे हे मछली ओ फिश जस्ट कम आउट ऑफ वाटर, तुम इस जल से बाहर निकलो, क्यों इस तरह का दुख भोग रही है? उस मूर्ख को पता नहीं कि जल ही जीवन है उसके लिए। उसका स्वभाव है कि जल के भीतर ही वो सुखी रह सकती, लेकिन कदाचित ममता बस सोचे कि अरे जल में उब रही है, जल में इसकी सांस फूल रही होगी, और वो कहे कि निकलो निकलो जल्दी, अरे न निकले तो जबरदस्ती निकाल ले और कुछ हवा में डाल ले, सांस लो थोड़ा अच्छा से, तो पानी से निकलते ही मछली की हालत बिगड़नी चालू हो जाएगी। वो छटपटाने लगे, जैसा आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से मछली छटपटाती है पानी के बिना। और अब किस उपाय से उसे सुखी किया जा सकता है? किसी उपाय से नहीं। कोई सोचे कि इसको अच्छा भोजन देना चाहिए, बासमती का चावल खिलाना चाहिए एकदम ताजा, उसमें घी डाल करके और अच्छा से बेस्ट क्वालिटी का कोई भी पदार्थ गुलाब जामुन खिलाया जाए, जरा मुख के पास करके तो देखिए, वो खा नहीं सकती मछली और उसकी दुर्दशा और बढ़ती जाती है। कोई ये सोचे कि इसको झूला झुलाना चाहिए तब ठीक होगी, कोई ये सोचे कि इसको सोने का भस्म खिलाना चाहिए, या कोई यह सोचे कि इसको सम्मान देना चाहिए, गीत सुनाना चाहिए अच्छा अच्छा, कोई भी उपाय कीजिए वो सुखी नहीं हो सकती है। या कोई ये सोचे कि दूध बहुत बढ़िया पदार्थ होता है, दूध में डाल दो, पानी में मर रही थी इसको दूध में डाल दो, तो दूध में डालते ही और मर जाएगी, क्योंकि उसका जीवन है पानी। इसी तरह हम लोगों का जीवन है कृष्ण के संग रहना, कृष्ण के संपर्क में रहना जीवन है, तो इनके बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते, कभी ये संभव नहीं। कृष्ण से अलग रह करके सुख के चाहे लाखों कोटि उपाय किए जाए लेकिन हमारा दुख ही बढ़ेगा, सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए इस दशा को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कितना सो रहा है, कितना सो रहा है, उठो जगो। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी निद्रा तोड़ने के लिए, तुम्हारा ज्ञान दूर करने के लिए आया हूं, और क्या लेकर के आया हूं, हरिनाम लेकर के आया हूं। एने छी औषधि माया नासी बारे लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम मानी। भगवान कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि मैं तुम्हारा हित करने के लिए, तुम्हारा रोग दूर करने के लिए एने छी औषधि औषधि लाया हूं। कोई पूछे कि क्या औषधि लेकर के आया है, तो कहते हैं हरि नाम महामंत्र। तो कोई कहे कि तो दे दीजिए, लाए हैं तो बांट दीजिए। तो भगवान कहते हैं लाओ तुम्हें मांगी, कम से कम मांगोगे तब ना, ऐसे कैसे दे दो इतना बहुमूल्य वस्तु। इसका मतलब जिज्ञासा तो होनी चाहिए, लेने की इच्छा तो होनी चाहिए, तब वो कहते हैं लाओ तुम्हें मांगी, तुम मांग लो दे दूंगा। इतना सुनते ही भक्त विनोद ठाकुर चरणों में गिरकर मांग लिए। भगत विनोद प्रभु चरण पढ़िया सही हरिनाम मंत्र लई लो मांगिए। भक्ति विनोद बहुत चतुर है, वो अपने को कह रहे हैं कि प्रभु के चरणों में गिर करके मांग लिया। क्या मांग लिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वास्तविक हित है जीवात्मा का इसमें। यदि कोई अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का, अपने भाई का, अपने पिता का, अपने स्वजनों का, संबंधियों का हित करना चाहता है तो उसे भगवान का नाम सुनाना चाहिए और भगवान की लीलाओं के संपर्क में लाना चाहिए, भगवान की कथाओं के संपर्क में, भगवान के श्री विग्रह मंदिर भक्त इन सब के संपर्क में लाना चाहिए, तब जीव सुखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जीवात्मा बोल रहा है अपने पिता चित्रकेतु के प्रति कि क्या हित करेंगे आप हमारा, कौन किसका प्रिय करता है यहां, क्या अप्रिय कर सकता है, कौन पराया है, कौन अपना है, एक सर्व ध्यान दृष्टा कर्तृ नाम गुण दोष है, जीव एक है। यहां एक से तात्पर्य जो है परिवार आदि के संबंध से शून्य है, जीव को अकेले ही रहना पड़ता है। जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा अकेले रहेगा। हमको याद आते एक बार एक जगह पर भात बना रहे थे कुछ लोग, तो मैं देखा भात को उतार लिए, उसका मान निकाल दिए और ऊपर से ठंडा पानी डाल रहे थे भात पर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्या कर रहे हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति बताया इसलिए ऐसा किया जाता है कि भात के जो कण हैं वो एक दूसरे में सटे ना, अलग अलग रहे, इसके लिए किया जाता है। सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आखिर शान करके सबको तो एक साथ सटा करके ही मुख में डालते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे अलग अलग रहते हैं। तो जीव इस तरह से अलग अलग रहता है, उसका स्वभाव अकेले मरता है, अकेले जीता है, बीमार भी होता है तो अकेले है ना। ऐसा नहीं कि घर में अब सर्दी हुआ एक लड़के को तो सबको होगा, नहीं, एक हॉस्पिटल जाएगा तो सब जाएंगे, नहीं, एक अकेले जीव आता है, अकेले जाता है और अकेले सुख भोगता है, अकेले दुख भोगता है। जीव कह रहा है तो फिर क्या आप रट रहे हैं कि मेरा पुत्र एक सर्व ध्यान दृष्टा कर्तृनाम गुण दोष है, कर्तृनाम गुण दोष है। कर्तृनाम से यहां तत्पर है संबंधी के गुण दोष से गुण दोष को दृष्टा है। गुण का अर्थ है सुख है देने वाले और दोष का अर्थ दुख देने वाले। चाहे दुख देने वाला हो सुख देने वाला हो, आत्मा वास्तव में तटस्थ होकर के देखता है और दुख देने वाले से भी मुख मोड़ लेता है, सुख देने वाले से भी मोड़ लेता है। जिस समय जीव मरने लगता है उस समय तो जो दुश्मन थे उनको भी छोड़ता है और जो अपने संबंधी होते उनको भी छोड़ता है, दोनों को छोड़ देता है। इसीलिए यहां कहा गया है कर्तृणाम गुण दोष है दृष्टा, वो साक्षी पत्र देखता है और फिर चला जाता है संसार से। और नारद जी ने यह कहा था कि भोगों को भोग, इस पर कहते हैं कौन क्या फल भोगेगा, ना दत्ते आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रिया फलम। दूसरे का कर्म कोई जीव दूसरा नहीं भोगता है। आप कहते हैं कि पिता के भोगों को भोग, पिता के भोग को हम क्या भोगेंगे, हम किए होंगे तब भोगेंगे कि उसका भोगेंगे। और वो पिता बेचारा सुन रहा है वो कितना मनोरथ करके धन इकट्ठा किया होगा कि हमारा बेटा ऐसे राजा बनेगा, खाएगा पिएगा। आत्मा गुणम न आदत्ते दोषम न आदत्ते न क्रिया फलम आदत्त, आत्मा न तो दुख का भोगता है सुख का भोगता है, न दुख का भोगता है और न तो क्रिया फलम राज्यादि का भोगता है। उदासीनत्व हेतु उदासीन उदासीन परावर दृगेश्वर, क्योंकि यह परावर दृग कार्य और कारण का ज्ञाता है, जो देखता रहता है न को भोगता है, यह ईश्वर है। ईश्वर जीव को है ईश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है देहादि परतंत्र शून्य, यह देह के भीतर बंधा हुआ नहीं है, देह को छोड़ करके चल देता है। या जब तक देह में है तो ये अपनी इच्छा के अनुसार देह को नचाता है, देह का ही मालिक है, देह के अंदर नहीं है, देह में बंधा नहीं है, देह छोड़ करके चला जाता है। एक बार कुछ लोग बैठे थे श्रील प्रभुपाद जी के पास और श्रील प्रभुपाद जी यही बात कर रहे थे कि जीव कुछ माने में स्वतंत्र है। तो एक व्यक्ति ने कहा क्या स्वतंत्र है जीव, यह तो सब तरह से अधीन है माया के या ईश्वर के, ये क्या स्वतंत्र है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि आप यहां बैठे हैं, आप आत्मा हैं, आप उठकर चल देंगे तो यहां के लोग क्या करेंगे, आखिर स्वतंत्र हैं कि नहीं आपकी इच्छा की है तो आकर बैठे हैं, इच्छा करेंगे चले जाएंगे, इसमें दूसरा कोई क्या करता है। तो स्वतंत्र तो हुए नहीं, इसे हुआ कि आप स्वतंत्र। ये प्रश्न होगा कि आत्मा देह को छोड़ता है कि देह आत्मा को छोड़ता है। तो देह आत्मा को छोड़े इसके तो कहना ही बेकार है, क्योंकि देह में कोई चेतना तो है नहीं, ये बुद्धि तो है नहीं कि अब मैं इसको छोड़ूंगा, लेकिन आत्मा देह को छोड़ देता है, यह देखा गया। जो सिद्ध हैं वो लोग तो प्रकट अपने देह को छोड़कर बैकुंठ जाते हैं, लेकिन वैसे भी अगर देह पर पीटा जाए मारा जाए तो आत्मा छोड़कर भाग जाता है देह को देखा गया है। देह की जब दुर्दशा होने लगती है तो आत्मा छोड़कर भाग जाता है, देह तो वहीं पड़ा रहता है। तो आत्मा को ईश्वर कहा गया है। इतना कह करके जीव अपनी ज्ञातियों के देखते देखते फिर चुप हो गया, और जैसे आंखें थी मरी हुई उलटा हुआ तारा वैसे फिर हो गया। ये सब प्रवचन सुने उसके स्वजन सारी स्त्रियां माताएं सब, ये तो विस्मिता मुमुचु शोकम छिप्वात्मा श्रेय श्रृंखला, उनका शोक दूर हो गया और उनके भीतर जो अज्ञान था वो भी नष्ट हो गया। मन में जो स्नेह की श्रृंखला थी इस संसार में यह अपना है यह पराया है यह सुख है यह दुख है सब खत्म हो गया। तो वे लोग निर्हित ज्ञात ज्ञातर देहम को त्वचिता क्रिया, तब बच्चे को उठा करके ले गए कफन बनाए और जलाए निर्हरण किए। निर्हरण का अर्थ दाह संस्कार आदि कर दिए जो उचित क्रिया थी मरने के बाद। और तब त्यजुर दुस्त्यजन स्नेह, जो स्नेह त्यागना बहुत कठिन था उसको उन्होंने त्याग दिया। एक तो अंगिरा जी का प्रवचन हुआ, नारद जी का हुआ और जीवात्मा का हुआ, तीन तीन प्रवचन के बाद क्यों नहीं अज्ञान चला जाएगा त्रिवाचा बहुत प्रसिद्ध है, कहते लोग तीन वचन दो। तो तत्तेजुर दुस्तेजन स्नेह, दुस्तेजस स्नेह, दुस्तर स्नेह, स्नेह त्यागना बहुत कठिन है, लेकिन अब मरा हुआ बच्चा उपदेश करे और इतना प्रकट क्लियर, तो क्यों नहीं ज्ञान हो जाएगा? किसी साधु के प्रवचन से भले ज्ञान हो या न हो, कोई बच्चा प्रवचन करे और अभी मर करके आ करके कर रहा है तो ज्ञान हो ही जाएगा। एक बार जमराज जी बच्चा बनकर के ज्ञान दे रहे थे राजा सुजग की पत्नियों को, ये सातवें स्कंध में कथा है। बच्चों की बात पर लोग बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए आजकल बाल व्यास बाल वक्ता सब बढ़ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भी लगभग बच्चा ही थे, 16 वर्ष के लगते हैं तो प्रवचन कर रहे थे, और सनत कुमार जी सब तो 5 वर्ष के बच्चे हैं, तो घूमते रहते हैं। अच्छा, और सबका तो शोक दूर हो गया, और उन लोगों के विषय में कुछ बोलिए, 10 लाख है 1 करोड़ जो बच्चे को विष दी थी वो भी प्रवचन सुनी, उन लोगों ने भारी सभा में खुलम खुला स्वीकार किया कि ये हमारी गलती है। तो बालघ्नो व्रीड़िता तत्र बाल हत्या हता प्रभा, बच्चे की हत्या करने से उन स्त्रियों का तेज नष्ट हो गया था। कितना देर बेचारी अपने को छिपाए रख, चेहरा कुंभला गया, लेकिन बच्चे की जब बच्चे के प्रवचन को उन लोगों ने सुना, और महाराज चित्रकेतु जब बिल्कुल प्रसन्न हो गया ये बात सुनकर, उनका शोक दूर हो गया, तब उन लोगों ने खोला कि ये तो सब हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ब्राह्मणों ने व्रत कराए, बाल हत्या व्रतम चेरु ब्राह्मण जब निरूपितम, ब्राह्मणों ने बताया कि इसके लिए ये प्रायश्चित करना है, ऐसे करना है, ये करना है। जमुना या महाराजा स्मरण तो दीर्घाषित, जमुना जी के तट पर जाकर के, मथुरा की ही कथा है, जमुना जी के तट पर जाकर के उन स्त्रियों ने बहुत से उपवास व्रत आदि किया, लेकिन हमेशा उनको दीर्घाषितम अंगिरा जी की और नारद जी की बात याद आती रहती थी कि ये जो सब पुत्र आदि का संबंध है ये सब क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर नहीं बल्कि महादुखदाई है, इसलिए उन लोगों में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो गई। उन सबों ने भी अब 1 करोड़ माला मंगाया और हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। राजा चित्रकेतु की भी कोई दोष बुद्धि नहीं रहे उन स्त्रियों में, समझ गए कि ईश्वर का विधान था। वो सभी भगवान का भक्त बनने लगे, जो भगवान की इच्छा होगी होगी, अगर पुत्र देना चाहेंगे देंगे, नहीं देंगे भगवान का भजन करना चाहिए। तो स्मरण तो द्विजभाषितम का ये तात्पर्य है कि ब्राह्मण के उपदेश उन्हें हमेशा याद आते रहते थे कि संसार में भक्ति करनी चाहिए और सब संबंध अनित्य है और उनसे कोई सुख नहीं। अब चित्रकेतु महाराज को भी इसमें सुन लेना चाहिए, वो क्या किए। स इत्थम प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतु द्विजोक्ति भी गृहांध कूपात निष्क्रांत सरह पंका दिवद्दीप। चित्रकेतु महाराज इस तरह से प्रतिबुद्धात्मा हो गए, उनके मन में ज्ञान का आलोक छा गया, साफ साफ दिखाई पड़ने लगा, पुत्र आदि की ममता तो सपना हो गई, खत्म हो गई पूरी, और बिल्कुल वे प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों की उक्तियों से, मतलब अंगिरा और नारद जी के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए, और गृहांध कूपात निष्क्रांत, गृह रूपी अंधकूप से निकल गए। ये घर गृहस्थी एक अंधकूप है, अंधकार से भरा हुआ कुआं है, इसमें व्यक्ति मानता रहता है ये मेरी है, ये मेरा है, वो है, वो है, ये करना है, वो करना है, ये जरूरी काम है, ये है, वो एक माला भी जपने की फुर्सत नहीं रहती है गृहांध कूप में गिरने पर, तो निकल गए। इनके निकलने का उदाहरण दे रहे हैं कि सरह पंका द्वीप, जो दो बार पानी पीता है उसको द्वीप कहते हैं। हाथी एक बार सूर्य से पानी लेता है और एक बार ये पीना हुआ और दूसरा लेकर के मुख में डाल, इसलिए हाथी को द्वीप कहते हैं, दो बार पीने वाला द्वीप हाथी। जैसे हाथी सरोवर के पंख से निकल जाए, इस तरह से वे निकल गए। ये घर गृहस्थी एक बहुत भारी पंख है, दलदल है, हमने तो हाथी को नहीं देखा है, लेकिन दूसरे पशुओं को फंसा हुआ देखा है जब मिल करके निकाला गया है। बरसात में नदी आती है और शरद काल में नदी का पानी घट जाता है, तो कहीं कहीं पंख जमा रहता है नदी के तट पर, बहुत गहरा, कई मीटर पंख। तो उसमें कोई पशु जाता है तो धस जाता है, जितना जोर लगाता है निकलने को उतना ही और धसता जाता है। मान लीजिए कोई हाथी धस रहा हो इस तरह दलदल में, धस गया हो, तो हाथी तो और भारी होता है और निकलने की चेष्टा करता है, लेकिन और धस रहा है धस रहा है। तो इस तरह चित्रकेतु धसते जा रहे हैं, आए थे निकालने के लिए अंगिराज, लेकिन ये गजराज और धस रहा था और पुत्र प्राप्त करके और धस रहा था, लेकिन फिर दो लोग आकर के निकाल दिए, अंग्रेजी और नारद जी आकर के निकाल दिए। ऐसे ही हाथियों को निकालना चाहिए। ये घर गृहस्थी के दलदल में फंसे हुए हैं, वो है भारी भारी गजराज फंसे और इनको निकालने का उपाय है भागवत की कथा। ये भागवत की कथा आकर के ब्राह्मण दोनों अंगिरा जी और नारद जी उपदेश किए, बस निकल गए दलदल से। यहाँ निकलने का अर्थ यह नहीं कि घर से निकल जाना, उस भावना से, ममता से, राग द्वेष आदि चिंता से मुक्त हो, ये निकलने का मतलब। यह नहीं समझना चाहिए कि आप घर छोड़ करके चल दिया बस निकल गया, नहीं नहीं, मन में ये भावना होना कि मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसका संबंधी हूँ, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके लिए करना है, वो करना, यह दलदल है। और जितना ही आदमी व्यवस्था करने को सोचेगा उतना ही और धसता जाता है। व्यवस्था करे, काम करे, लेकिन मन को फ्री रखे, परंतु मन फ्री होगा द्विजोक्ति भी, ब्राह्मणों की उक्तियों से, द्विज की उक्तियों से, उपदेशों से। इस तरह वे निकल गए, जैसे हाथी महापंख से निकल जाए, वैसे गृहांध कूप से निष्क्रांत निकल गए, ज्ञान हो गया। ये गए फिर कालिंद्याम विधिवत स्नात, कालिंदी में गए, जमुना जी में विधिवत स्नान किए, कृत पूर्ण जल क्रिया, और फिर जल क्रिया भी किए, पुत्र को जल देना था या और भी जो क्रिया की जाती है, मौन होकर के, बोलना छोड़ करके, आरा करके, तब दोनों ब्रह्मपुत्रों की वंदना किए। अब नारद जी और अंगिरा जी को प्रणाम किए साष्टांग, इसके पहले तो खड़ा खड़ा भी हरे कृष्ण भी नहीं कहे थे इसके पहले तो रो रहे थे, अब प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद तब श्री नारद जी ने इन्हें उपनिषदों का स्तोत्र सुनाया, मंत्र दिया इनको, इसके बाद ये घर से निकले। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।